नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोगों को वृंदावन धाम में देखकर बहुत आनंद हो रहा है। इससे कई बरसों की इच्छा पूर्ण होती है ना, श्री वृंदावन धाम। हमारे केशु भाई 16 साल से उनको बोल रहे हैं, आओ 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 चले आओ। इस बार टिकट निकाल के दिया, ये लो टिकट, अभी आओ। तो आ गए। वैसे ही जब नर्सिंग लोग स्टूडेंट एडमिशन लेते तब से हमारे मन में वो चक्र चलता है, कब पहुँचेंगे वृंदावन धाम। पहुंच गए ना अभी। जय हो, हरे कृष्ण। तो श्री वृंदावन धाम जो है भगवान का बहुत ही अति प्रिय दिव्य लीला स्थली है। ये भगवान का सबसे प्रिय वन है। 137 वन है, वैसे तो करोड़ों वन है वृंदावन में, लेकिन 137 उसमें बहुत ज़्यादा भगवान को प्रिय है। उनमें से 12 अति प्रिय हैं। वो 12 में से 5 जमुना जी के इस तरफ है, 7 इस तरफ है और 5 उस तरफ है। और 12 में से सबसे अधिक प्रिय वन जो है वो वृंदावन धाम है। और वृंदावन धाम इसलिए प्रिय है क्योंकि वृंदावन में यमुना जी और गोवर्धन भी हैं, इसलिए भगवान को अति प्रिय है। और वृंदावन धाम से भी अधिक उनको गोवर्धन प्रिय है, और गोवर्धन से भी अधिक प्रिय राधा कुंड और श्याम कुंड है। तो सब लोग ना एक बार श्री वृंदावन धाम के प्रणाम मंत्र को दोहराइए, बहुत इसमें लाभ होता है। बोलिए, वृंदा विपिना रम्याय, वृंदा विपिन रम्याय भगवत वासहेतवे परम आह्लाद रूपाय वैष्णवाय नमो नमः। ये भगवान के रमण का स्थान है, ये साक्षात आह्लाद है और वैष्णव इनको प्रणाम करते हैं क्योंकि भगवान के अस्तित्व का संग यहाँ पर प्राप्त होता है। गोपिका शतकोठी भी कृष्णरात्सो उत्सवाय च, कृष्णरास उत्सवाय च नमस्ते रास गोष्ठाय वैमल्य वरदायिने, वैमल्य वरदायिने। इसका अर्थ यह है कि शतकोटि यानी अनेक 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 कोटि गोपियों के साथ श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर रास रचाया, और रास गोष्ठ यानी इस रास स्थली को हम प्रणाम करते हैं जो सबके हृदय को वैमल्य यानी मल से मुक्त कर देता है। सबको मल यानी पाप यानी दोष यानी त्रुटि इन सब से मुक्त करने का वरदान प्रदान करते हैं। क्या कहा है, वैमल्य वरदायिनी, ऐसा ये धाम है भगवान का। तो यहाँ पर वृंदा देवी जो है उसको बड़े प्रेम से भगवान ने श्री वृंदावन धाम को अर्पण किया था भेंट के रूप में, इसलिए सबसे प्रिय वन का नाम वृंदावन रखा गया। तो वृंदा देवी को भी जो इनकी अधिष्ठात्री है उनको प्रणाम करना भी बहुत जरूरी है। वृंदा देवी समेताय गोविंदाय नमो नमः, लोक कल्मश नाशाय परमात्म स्वरूपिणे परमात्मा स्वरूपिणे। ध्रुव महाराज के वंश में एक राजा हुए केदार, राजा केदार, उनके भी पुत्र का नाम वृंदा देवी है। उन्होंने इस वन में 108 युग तक तपस्या किया था। एक युग कितने दिन का होता है? कलयुग 4,32,000 साल का होता है। एक दिव्य युग 43,20,000 साल का होता है। तो ऐसे 108 दिव्य युग उन्होंने इस जगह पर तपस्या किया है, इसलिए भी इस जगह का नाम श्री वृंदावन धाम पड़ा है। ये भगवान की महाराज स्थली है, भगवान की बड़ी प्रिय स्थली है। इस वन को वृंदावन नाम कई कारण से पड़े हैं। एक कारण है कि राधा रानी का भी एक नाम वृंदा है, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा है। 16 नाम राधा रानी के जो है उसमें से एक नाम वृंदा है। दूसरा ये है कि वृंदा देवी स्वयं इस वन की अधिष्ठात्री है, चीफ। तीसरा, केदार राजा की पुत्री जो दूसरी वृंदा देवी है। वृंदा देवी कई हो गया, जो तुलसी बनी है वो एक वृंदा देवी है, लेकिन बहुत सारी वृंदा देवी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त में आता है। उसमें राधा केदार की पुत्री ने यहाँ पर तपस्या किया है। वृंद और यानी कि यहाँ पर जो सखियों का वृंद है, ग्रुप, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको यूथ भी कहते हैं। यूथ, एक यूथ एक कोटि गोपियों का होता है। तो ऐसे सारे यूथों को यानी वृंदों को ये जगह पोषण देती है, आध्यात्मिक पोषण, इसलिए उसको वृंदावन कहा गया है। जैसे केवल मनुष्य का ग्रुप नहीं, गायों का ग्रुप, गोपालों का ग्रुप, लताओं का समूह, सबका यहाँ पर पोषण होता है। और एक पांचवा कारण यह है कि इसी वन में और एक वृंदा देवी थी, इसका नाम था, जिसके जो कुशध्वज राजा की पुत्री थी, कुशध्वज, वो वृंदा देवी का विवाह शंखचूड के साथ इसी वन में हुआ था, इसलिए इसका नाम वृंदावन पड़ा है। हरे कृष्णा। दूसरी विशेष बात यह है कि इस वृंदावन में जितने भी प्रमुख आचार्य हुए हैं सारे संप्रदायों के, वो सारे संप्रदायों के आचार्यों के विग्रह इस वृंदावन में हैं, श्री वृंदावन धाम में। तो उनका सबका दर्शन अगर करना है आपको, तो आपको 7 दिन भी कम पड़ेंगे। वृंदावन बहुत बड़ा है, हम लोग तो खाली आपको क्या कहते हैं उसको, ट्रेलर दिखा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं खाली, ताकि आप लोग दोबारा आएँ और पता चले कि और भी देखना है बहुत। तो खाली हम लोग क्या करेंगे, अभी सब लोग ना हाथ जोड़िए और मैं एक एक ठाकुर जी के नाम लूँगा और उनके आचार्यों के नाम लूँगा, आप हृदय से उनको प्रणाम कीजिए, क्योंकि आप यहाँ तक आए हो, इस जगह पर बैठे हो, इस जगह से उनको प्रणाम करोगे तो बहुत जल्द उनके चरणों में पहुँच जाएगा। तो सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जी, राधा मदन मोहन जी हैं जिनमें हम जाएंगे, रूप गोस्वामी के राधा गोविंद जी, मधु पंडित के गोपीनाथ जी, राधा गोपीनाथ, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर, गोपाल भट्ट गोस्वामी के राधा रमन, विश्वनाथ चक्रवर्त ठाकुर जी के राधा गोकुलानंद, श्यामानंद गोस्वामी के श्याम सुंदर जी, राधा श्याम सुंदर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के राधा वृंदावन चंद्र, जयदेव गोस्वामी के राधा माधव जी, लोकनाथ गोस्वामी के राधा विनोदी लाल, भूगर्भ गोस्वामी के राधा छैल चिकन, हरिदास स्वामी हरिदास के बांके बिहारी, जहाँ पर हम जाएंगे, श्री हित हरिवंश गोस्वामी के राधा वल्लभ जी, यहाँ पर भी हम जाएंगे, नरोत्तम दास ठाकुर के बहने बारे में मैंने पूरी कथा सुनाई, उनके भी राधा ब्रजमोहन श्री वृंदावन में हैं। यमुना किनारे आगे जाएंगे तो एक लाल रंग का मंदिर आता है, वो स्वामी हरिराम व्यास जी का मंदिर है, उनके राधा जुगल किशोर जी वो भी यहाँ विराजमान हैं, और हमारे प्रिय घनश्याम बाबा के भी सबसे प्रिय विग्रह राधा गोपीजन वल्लभ, वो भी वृंदावन में विराजमान है। वैसे तो 5,000 मंदिर है, ये मंदिर में राधा गोपीनाथ जी विराजमान है। ये इतना पावरफुल जगह है, कि एक तो ये जमुना किनारे में है, सबने दर्शन किया जमुना जी का, श्री जमुना जी गौलोक से यहाँ पर अवतरित हुई है, और इनका महात्म्य ऐसा है कि इनको केवल प्रेम से भी निहारेंगे, आंखों में प्रेम लेकर निहारेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्र से आप मुक्त हो जाएंगे और आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए केवल चलना नहीं, सब तरफ प्रेम से निहारना। ब्रजभूमि को भी आप प्रेम से निहारोगे आते जाते तो भी आपके हृदय में कृष्ण प्रेम का निर्माण हो सकता है। ये सब छोटी छोटी पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसलिए हम धाम में जब चलते हैं तो भी टाइम पास नहीं करते हैं, सारे इंद्रियों को खुला रखते हैं, वो देखते रहते हैं क्या क्या यहाँ पर चीज़ है जो हमारे हृदय को शुद्ध कर सकती है। तो जमुना जी वृंदावन का एक अविभाज्य अंग है, और वो वृंदावन जो है वो इनका इतना प्रिय है कि जैसे हमारी आँख, अगर समझो वृंदावन है तो अगर हम आँख को काजल लगाएंगे ना पूरा, तो कैसे काजल की रेख होती ना, उस तरह से जमुना जी वृंदावन के गोल घूमती है पूरा, ऐसा अंदर जाती है पूरे पूरे वृंदावन को कवर करके ऐसे करके फिर वापस चली जाती है, काजल की तरह वृंदावन को वो सुशोभित करती है अपने जल से। श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, जब उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम का अनुभव करने के लिए यहाँ पर अवतार लिया था, कुछ लोगों ने आपने वो देखा ना चित्रपट, वहाँ पर अभी आप देख सकते हो, अभी आप मुड़ के देख सकते हो, सेकंड नंबर चित्रपट जो है ना, जहाँ पर माता जी बैठी है ग्रीन साड़ी पहन के, उनके आगे एक व्यक्ति बैठे हैं मुकुट पहन के और लड़कियाँ उनके आसपास बैठी हुई है ना, श्री कृष्ण का गौरांग रूप धारण। तो संक्षेप में कहानी ऐसी है कि जब वृंदावन में भगवान ने रास रचाया, ये उनकी रासस्थली है जमुना किनारा, ये पूरा आप रास मंडल में बैठे हो, तो रासस्थली में जब गोपियों को गर्व हुआ कि केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, गर्व होता है ना कि आई एम स्पेशल, ही इज़ ओनली विथ मी, तो भगवान का गर्व अच्छा लगता नहीं है। तो जैसे उनको गर्व हुआ सब गोपियों को, सबके साथ नृत्य कर रहे थे वो, लेकिन सबको लग रहा था कि मेरे ही साथ में, इसलिए वो अंतर्धान हो गए और अंतर्धान होकर यहाँ आकर बैठ गए। कहाँ बैठे, जहाँ पर वेद बैठे उसके पीछे जो गोल चबूतरा बैठा है, बना है ना, तो ये इमली का पेड़ है, पुराना जो प्राचीन वृक्ष है वो ये है, इसको कवर करके रखा हुआ है, ये पुराना प्राचीन वृक्ष है और ये अभी उसका बेबी होगा शायद, लेकिन ये उसी जगह पर है। तो यहाँ पर मैं जैसा मुँह करके बैठा हूँ, उसी जगह मुँह बैठ कर कृष्ण बैठ गए, जैसे वो तो पेड़ में है, और उनको भी राधा रानी का विरह हुआ, गोपियों का विरह हुआ, तो वो आँख बंद करके ध्यान लगाने लगे राधा रानी के ऊपर, तो वो इतने राधामय हो गए, इतने राधामय हो गए, इतने राधामय हो गए कि उनका ही रंग धारण किया उन्होंने, वो सांवले रंग के थे लेकिन वो स्वर्ण रंग के गोरे रंग के हो गए, उनको पता नहीं क्या हो रहा है उनको, उनकी तो आँखें बंद हैं। उतने में वहाँ से गोपियाँ ढूंढते ढूंढते आती है, कहाँ गए, देखते ही तो एक अजीब व्यक्ति बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, लगता तो पहचानता सा है, मोर पंख धारण किया हुआ है, पीताम्बर पहना हुआ है, सब कुछ है लेकिन रंग गोरा है, ये तो हमारे ठाकुर जी नहीं हो सकते, वो तो सांवले रंग के हैं। तो चर्चा करने लगे, कौन है क्या है। उतने में भी राधा रानी ने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ, तो आगे आती है और व्यक्ति को स्पर्श करती है, जैसे ही वो स्पर्श करती है वो पूरे बाह्य चेतना में आते हैं, बाह्य चेतना मतलब जो खोए हुए थे ना ध्यान में, वो बाहर आ जाते हैं, तो उनका जो गोरा रंग है वो वापस सांवला हो जाता है। तो राधा रानी उनको पूछती, अरे ये तो आप ही हो, ये क्या चमत्कार है। तो वो बताती है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये उनका अटैक नहीं है, प्रेम है, प्रेम। इस बात को समझना आप। राधे राधे, और क्या चाहिए बोलो। अरे कोई आ जाओ इसको लेने के लिए। लो भाई लो, ये लो, सुमाला आपका चाहिए उसको, दे दो दे दो, इसको निकालो यहाँ से। आ जाओ मेरे पास, ले लो भैया, लो लो लो, खा लो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, गुस्सा करेगी और गुस्सा करेगी। जय गौ माता की जय हो। हरे कृष्ण। मैं ठीक हूं ना, मेरा कोई हिस्सा लेके नहीं गया। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु, सॉरी, कृष्ण भगवान ने कहा कि जब आपके विरह में था मैं, तो आपकी याद में मैं आप ही बन गया था। और उस समय में इतना दिव्य अनुभव किया। जप नहीं करना है कोई, क्लास के समय जप नहीं करना है प्रभु जी, नो बड़ी चांस। तो उन्होंने कहा कि मैंने इस अवस्था में, अभी आप कह रहे हो कि मैं गोरा रंग का हो गया था, तो इस अवस्था में मैंने इतना प्रेम का अनुभव किया है कि मैं एक पूरा अवतार लूंगा इस भाव को समझने के लिए। और उस समय उन्होंने ऐलान किया कि मैं आगे जन्म में चैतन्य महाप्रभु बनकर अवतार लूंगा। तो आप देख सकते हैं ना आगे, देखो वहाँ पर वो बैठे हुए हैं मांडी, मतलब पलटी मारकर, और राधा रानी उसको छू रही है ना। उसके आगे क्या चित्रपट है, वो राधा रानी बैठी हुई है और पैर से खून आ रहा है क्या? हाँ, राधा रानी एक बार वहाँ जल्दी जल्दी चल चल के जा रही थी, तो उनके पैर में कुछ लगा और पैर से खून आने लगा। तो उन्होंने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा कि इमली का पेड़ है, इसका आपको लग गया पैर में। तो उन्होंने पेड़ को शाप दे दे कि आपके पेड़ को पूरे ब्रज में कभी भी फल नहीं लगेगा। इसलिए पूरे ब्रज में जितने भी इमली के पेड़ है, उसको इमली के पेड़ है लेकिन इमली लगती नहीं, कभी इमली नहीं मिलती है, ऐसा विधान है इसका। थोड़ा दिख तो रहा है इधर, लेकिन आमतौर पर नहीं मिलता है। अभी उसके आगे देखिए आप, नहीं तो उधर उधर है ना वो, हाँ वो जो खून लगा था वो उधर है, फिर उधर वो लीला है। इधर इधर ये वृंदावन कुंड के पीछे, रवि के पीछे देखो, वहाँ पर राधा रानी को बिठाया है सिंहासन पे, और सब सखियाँ उनको ऊपर से अभिषेक कर रही है। ये उस समय का प्रसंग है जब इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, तो उनका नाम गोविंद रखा। पूरे विश्व के राजा के रूप में इंद्र ने ऐलान किया कि अभी आज से आपका नाम गोविंद है। तो सब सखियों के पास से खबर पहुंच गई कि उधर वृंदावन में, उधर गोवर्धन में कन्हैया जी का अभिषेक हो रहा है, हमको भी राधा रानी का वृंदावनेश्वरी के रूप में अभिषेक करना चाहिए। तो राधा रानी को वो सब लोग यहाँ पर लेके आए, और यहाँ पर लेकर आकर सभी गोपियों ने उनका बहुत दिव्य अभिषेक किया और उनको वृंदावनेश्वरी के नाम से घोषित कर दिया। बोलो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधा रानी इसी जगह पर उनको घोषित किया गया कि वृंदावनेश्वरी, हाँ वो अगर गोविंद है तो हमारी राधा रानी वृंदावनेश्वरी है। अभी ठीक महेश के पीछे देखो, और एक जो माताजी के राइट, माताजी हाथ दिखाओ राइट साइड में, देखो वहाँ पर जो डायरोमा है वो यही पेड़ है, और वो कौन बैठे हुए हैं, वो चैतन्य महाप्रभु है। फिर चैतन्य महाप्रभु आए ना, चैतन्य महाप्रभु बनकर कृष्ण भगवान, तो वो यहाँ पर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विशेषता यह है कि वो जमुना जी को बड़े प्रेम से निहारते हुए यहाँ से मुख से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करते थे। और जब कृष्ण के रूप में यहाँ बैठे थे तो सांवले रंग के गोरे हो गए, जब स्वर्ण वर्ण के रूप में आए और हरे कृष्ण मंत्र का जप किया तो वो सांवले रंग के होते थे। यहाँ पर बैठ के गोरे रंग के भगवान जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो कृष्णमय हो जाते थे, रोज सांवले रंग के बन जाते थे भाव से इसी जगह पर। इसलिए आप लोग संकोच मत करना, एक बार अच्छी तरह से हाथ जोड़ के प्रेम से बोलना, ये जप की सली है भगवान के, स्वयं भगवान ने यहाँ पर आकर जप का एक जप किया है हमारे लिए उदाहरण के रूप में। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 महीना चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में निवास किया, उसमें से रोज यहाँ पर आकर वो जप करते थे और शाम के समय 2-3 घंटा ब्रजवासियों को नाम के जप के रहस्य के बारे में चर्चा करते थे। सेमिनार ऑन होली नेम यहाँ पर हुआ करता था। यहीं पर एक बार ब्रजवासी भाग भाग के आए, बोले हे जमुना जी में कृष्ण का अवतार हो गया है। बोले अच्छा, तो फिर बाद में सब लोग ऐसे क्लास छोड़ के भाग गए रात को, जब बोले कालिया कृष्ण का अवतार हुआ है, कालिया भी अवतारित हुए हैं और कृष्ण भी अवतारित हुए हैं पर रात में दिखते वो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा सब बकवास है, कोई जाना नहीं वहाँ पर। फिर भी सब लोग चले गए। बाद में पता चला कि रात में एक मच्छीमार होता है ना कोड़ी, वो अपने बोट में एक लालटेन लेकर मच्छी पकड़ता था, तो उनको लगा जो लालटेन है वो कालिया है, कालिया के सर के ऊपर का मणि का प्रकाश है वो, और जो चला रहा है उसको वो कृष्ण है, ऐसा उनको लगा। तो एक बहुत बढ़िया बात चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई कि ऐसे बेकार के भ्रम में आपको फंसना नहीं है। कोई भी कहेगा कृष्ण का अवतार हुआ है, अभी ये व्यक्ति भगवान का अवतार है, ये तो कल्कि अवतार है, ये फलाना शिव जी का अवतार है, ऐसे बोल कपोल कल्पित बातों को विश्वास नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि होने वाला है तो विश्वास करना चाहिए। तो भगवान ने बताया कहीं पर शास्त्र में दिया नहीं है कि अभी कृष्ण का अवतार होने वाला है, लेकिन वो स्वयं ही कृष्ण का अवतार थे और उनके बारे में शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भक्त रूप अवतार लेकर सबको भगवान के नाम का जप करना कैसे करना चाहिए उसको सिखाते हैं। और इस जगह पर 2 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने निवास किया है। ये जगह बड़ी पवित्र जगह है और यमुना किनारे है, यमुना के रेत में है। फिर हमारे प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, इन्होंने यहाँ पर ये राधा गोपीनाथ जी के विग्रह स्थापन किए हैं। 20 साल पहले जहाँ पर डॉक्टर संके बैठे हुए हैं वहाँ पर राधा गोपीनाथ जी खड़े थे, ऐसे गौर नेताई और राधा गोपीनाथ, इतना ही मंदिर था। जहाँ मैं बैठा यहाँ मंदिर समाप्त होता था। फिर उसका जीर्णोद्धार करके बड़ा सुंदर बनाया गया। जो जो लीला हम सुनाते थे अभी वो सबको डायरामा के रूप में रखा गया, बहुत सुंदर। तो कारण क्या है, सब लोग संत लोग कष्ट करते हैं ना, मेहनत करते हैं, तब हमारे तुम्हारे लिए सुंदर जगह बैठने को मिलती है। पूरी मट्टी थी यहाँ पर, कुछ नहीं था। हम लोग सवेरे सवेरे आकर जप करते थे, यहाँ से जप करके यात्रा शुरू करते थे, क्योंकि जप करने के लिए यहाँ पर जप करने से लाखों और लाखों गुना अधिक लाभ होता है। वैसे ही वृंदावन धाम है तो 1 लाख गुना तो आपको लाभ होता ही है, ऊपर से इमलीतला आएंगे तो और 1 लाख गुना आपको लाभ मिलता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमें यहाँ पर भक्त बनकर जप किया है। तो हम लोगों को कितना भाग्यशाली मानना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान स्वयं आए, भगवान के भक्तों ने मंदिर बनाया और कितने लोगों ने संभाल के रखा। एक दिन ये जो पेड़ है ना, इधर बाजू में बड़ा घर था, उधर वो कुछ घर का काम कर रहे थे, उनको घर बनना था, अभी तो तोड़ दिया उन्होंने पूरा, इन्होंने जगह ले लिया। उधर एक पास में ही घर था तो ये शाखा उनके घर में जा रही थी ऐसे, तो उन्होंने क्या किया, बांधकाम करने के लिए उस शाखा को काट दिया, तो उस शाखा में से बहुत भयंकर खून बहने लगा, डर गए एकदम वो। उन्होंने कहा ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये इमली तला है, यहाँ पर राधा रानी का अभिषेक हुआ है, यहाँ पर कृष्ण भगवान ने ध्यान किया है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने ध्यान किया है, राधा रानी के चरणों का स्पर्श इस पेड़ से हुआ है, 2 महीना चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर रहे हैं, कोई साधारण पेड़ नहीं है कटने के लिए और जलाने के लिए। तब उन्होंने क्या किया, ऐसे ही उस पेड़ को आसरा दिया और अपने घर पे भी बढ़ने दिया उसको, फिर उसको उनके घर में भी कई दिन तक वैसा सपोर्ट में था। फिर वो ओरिजिनल पेड़ जो, उसका दर्शन कीजिए, बहुत विशेष विभूत है ये, और ये ओरिजिनल पेड़ अभी कब का शरीर छोड़ चुका है, लेकिन उसका शरीर यहाँ पर संभाल के रखा गया है ताकि आप लोग दर्शन कर सके, प्रार्थना कर सके। ये दिव्य कल्प वृक्ष है, सब लोगों की दिव्य कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसे दिव्य वातावरण में हम लोग सब बैठे हुए हैं। आप लोग कभी कहाँ जाके आए, चीरघाट जाके आए ना, चीरघाट देखा ना आपने, वो स्थली है जहाँ पर भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को छीना था। गोपियाँ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में कात्यायनी व्रत कर रही थी, वो कार्तिक महीने के बाद शुरू होता है, 30 दिन का व्रत। समाप्ति के ऊपर श्री कृष्ण भगवान स्वयं आए और उनके सबके वस्त्र छीन लिए, मतलब एक दूसरे से उनको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और जब बाहर आकर वस्त्र ले लिए उन्होंने, तो उन्होंने वादा किया कि 5 दिन में आपको मैं रास में प्रवेश दूंगा। तो सारी उन गोपियों को जिनका वस्त्र छीना था, वो सब लोगों को 5 दिन के बाद में रास लीला में प्रवेश मिला, वो भी इधर ही बंसीवट में। तो वो है चीरघाट। हम लोगों को क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे ऊपर भी बहुत सारे कपड़े हैं, है ना, सुंदरता का कपड़ा है, ज्ञान का कपड़ा है, मैं कौन हूँ, फलाना हूँ, है अधिकारी हूँ, मेरे पास इतना पोजीशन है, मैं गवर्नमेंट का अधिकारी हूँ, मैं यहाँ का संचालक हूँ, ये सारे कपड़े हैं ना, बहुत सारे कपड़े पहन के रखे हैं। तो जब श्री कृष्ण छीन लेते सब कपड़े, तो हम अपने ओरिजिनल रूप में सामने आ जाते हैं। हमारा ओरिजिनल रूप क्या है कि हम उनके अंश हैं। तो हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रेम से आपने गोपियों के वस्त्र छीने, हमारे भी सारे जो छोटे वस्त्र हैं वो सब आप छीन लो। बाद में कृष्ण ने क्या किया, जब वस्त्र छीन लिया तो क्या किया, गोपियों को अपना बना लिया। तो हमें भी अपना बना लो, अपनी लीला में प्रवेश दो, अपने सेवा में प्रवेश दो। ऐसे आप चीरघाट के लिए प्रार्थना करना। फिर हम श्रृंगारवट में गए ना आप लोग, श्रृंगारवट भी बहुत सुंदर बरगद का पेड़ है। क्या देखा आपने उधर, अंदर अंदर नहीं गए? हाँ, वो जो पेड़ है बड़ा, उसके सानिध्य में श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के बालों को श्रृंगार करते थे, इसलिए उसका नाम श्रृंगारवट है। बहुत सुंदर दृश्य है, राधा रानी ऐसे आईना लेकर बैठी है, श्री कृष्ण भगवान बालों को संवार रहे हैं उसके और श्रृंगार कर रहे हैं। वहीं पर बलराम जी के अवतार नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के इंतजार में वहाँ पर निवास किया था अकेले, और इतने चैतन्य महाप्रभु के भाई नित्यानंद प्रभु कृष्ण के विरह में इतने व्याकुल रहा करते थे कि उनके आँखों से निरंतर अश्रु बहा करते थे, और उनके अश्रु से वहाँ पर पीछे एक हौद बना हुआ है, तो देखा आपने। अगली बार दिखाना, तो पेड़ जो है उसके पीछे ही बिल्कुल है वो, ऐसा एक हौद बना हुआ है, पानी तो नहीं अभी उधर, हाँ तो रज है, रज। तो वो नित्यानंद प्रभु के अश्रुओं से बना हुआ तालाब है, यहाँ पर नित्यानंद प्रभु प्रेम से अश्रु बहाया करते थे। फिर जब चैतन्य महाप्रभु का बुलावा आया तो फिर यहाँ से वो मायापुर चले गए, अपनी उनकी उम्र की 24 साल उम्र में वो यहाँ से मायापुर चले गए। तो ये वही श्रृंगारवट की महिमा। इसके आगे हम राधा वल्लभ मंदिर जाएंगे, बस से जाएंगे ना, हाँ राधा वल्लभ मंदिर जाएंगे, वो श्री हित हरिवंश गोस्वामी का मंदिर है। हित मतलब उनका एक टाइटल है, हरि यानी कृष्ण, वंश यानी मुरली, तो भगवान के वंशी के अवतार थे वो, और उनके लिए भगवान प्रकट हो गए राधा वल्लभ जी के रूप में। और जहाँ वो प्रकट हो गए और जहाँ पर उनका पूजन किया गया, उस जगह पर हमारे भोजन का व्यवस्था है आज। तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो पूरी में कहानी बताऊँगा। राधा वल्लभ जी बहुत ही सुंदर विग्रह हैं भगवान के, बहुत ही अद्भुत। और उनके गोस्वामी जी, हमारे गोस्वामी जी, हम गुरु जी से बहुत प्रेम करते हैं, तो बहुत प्रेम से आपका स्वागत होगा। अभी सब लोग प्रेम दर्शन करना, वहाँ पर कथा नहीं होगी, उसकी कथा मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके आगे हम बांके बिहारी मंदिर जाएंगे, हाँ कोई लिखते रहे हैं, खड़े सुन रहे हैं सब लोग, फिर वहाँ पूछेंगे ये कौन सा है, ये यहाँ कौन सा मंदिर है। अभी जाएंगे वो राधा वल्लभ जी मंदिर है, बंशी वाले जो अवतार हैं भगवान के, हम बंशी के अवतार हरिवंश गोस्वामी उनके द्वारा ये इनका पूजन किया गया है। और बांके बिहारी मंदिर की कहानी मैं बता दूंगा आपको। इधर बांके बिहारी मंदिर जो है वो बड़ा अद्भुत मंदिर है, उनको ब्रज के राजा कहते हैं, बिहारी जी महाराज। तो एक स्वामी जी थे स्वामी हरिदास, वो ब्रज के बड़े प्रसिद्ध आचार्य थे। स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश, हरिराम व्यास जी, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, ये सब साथ में थे, कंटेम्प्ररी एक साथ में सब थे। उसके बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वगैरह वगैरह। तो स्वामी हरिदास जी निधि वन में भजन करते थे, और निधि वन में जब वो भजन करते थे तो अचानक उनके सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए निधि वन के अंदर। तो वही ठाकुर जी हैं बांके बिहारी जी। बांके बिहारी, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। बांके बिहारी जय हो तिहारी, हरि बोल। तो बांके बिहारी की विशेषता ये है कि उनके मंदिर मंदिर में पर्दा बार बार बंद चालू बंद चालू बंद चालू होता है। इसका कारण ऐसा है कि बांके बिहारी छोटे से बालक हैं, सब लोग उनको देखते हैं, वो भी उनको देखते हैं, और किसी की उनके साथ नज़र मिल गई तो फिर वो उनके साथ चले जाते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि वो दर्शन बंद हो गया प्रसाद के लिए, जब खोला तो अंदर बांके बिहारी नहीं थे। बहुत ढूंढा उनको, बहुत ढूंढा, तो मंदिर के बाहर बैठकर किसी भक्त से बात कर रहे थे। तो सोचा उन्होंने कि अभी नज़र मिलने के पहले काट दी जाए। हाँ, नंदन नंदन प्रभु देख रहे हैं, बहुत भाव से देखने लगे, पर्दा बंद। तो कनेक्शन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बंद। कनेक्शन होने के पहले ही बंद, फिर वापस खोला, आप वापस करने लगेंगे तो वापस पर्दा बंद। तो ज़्यादा कनेक्शन होने को देते नहीं है वो। तो प्रकट कैसे हुए थे वो, सॉरी इनकी एक और सुंदर कहानी है। प्रकट तो हो गए निधि वन में, तभी उनका मंदिर अभी जहाँ पर है वो बड़े घने जंगल में था 400 साल पहले। तो एक बुढ़ा व्यक्ति था, वो बहुत बुढ़ा हो गया, तो सोचा कि अभी मरने वाला हूँ तो अभी बेस्ट व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, सबसे बेस्ट कौन है। तो उसको लगा कि हमारा गांव का सरपंच है ना, सबसे बड़ा आदमी है, तो उसकी सेवा में लग गया वो। जय हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई गांव वाला एक्सपर्ट आ जाओ उनको थोड़ा बाहर। हरे कृष्णा, मधुनंद जी उपाय बताओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हमको तो लगता है आतंक है, लेकिन वो प्रेम है उनका, बड़े प्रेम से आते हो। आतंक वाले तो कब तक आपको उधर देते पूरा, लेकिन ये बड़े प्रेम से आते चाट रहे हैं आपको। दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस लव बिकॉज यू हैव कम फ्रॉम बॉम्बे, वेन यू विल कम अगेन, दिस वे आर टचिंग यू एंड लिकिंग यू। तो सरपंच को देखा उन्होंने, तो उसकी सेवा में लग गए पूरा छोड़ के। कुछ देर बाद देखा कि एक बड़ा अधिकारी आया और सरपंच उसकी भी सेवा कर रहे हैं, तो सरपंच को छोड़ दिया, उसकी सेवा में लग गए। कुछ देर बाद देखा वो भी आदमी किसी मंत्री आया तब उसकी सेवा कर रहे हैं, तो उसको छोड़ दिया, मंत्री की सेवा में लग गए। बाद में देखा मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री की सेवा कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की सेवा में लग गए पूरा फुल टाइम। एक दिन देखा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सेवा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की सेवा में अपना रुजू हो गए वो, बोले आपकी सेवा करना है बस। फिर देखा प्रधानमंत्री राजा की सेवा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी छोड़ दिया और राजा की सेवा में लग गए। अभी राजा की सेवा में बहुत दिन रहे, क्योंकि राजा के और कोई दिखाई नहीं पड़ा कि राजा किसके सेवा कर रहे हैं। दिन भर लोग राजा की सेवा करते हैं, दरबार में बैठकर सब लोग जय जयकार करते हैं। वो तो बहुत दिन तक राजा की सेवा किया। एक दिन देखा राजा राजवस्त्र पूरा उतार दिया, मुकुट उतार दिया पूरा, सफ़ेद धोती सफ़ेद कुर्ता बिना चप्पल पहन के राजमहल से निकले। रात को निकले और जंगल में जाने लगे, तो उनके पीछे पीछे भी जाने लगे। तो देखते हो क्या कि जंगल में जाकर रात को बांके बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं। थोड़ा उनका आश्चर्य हो गया, ठंड का मौसम था। तो अरे राजा भी जिनकी सेवा करता है, ये तो राजा के राजा है, महाराजा जयराज है ये। तो राजा को भी छोड़ दिया उन्होंने और उसी जंगल में खड़े हो गए। उधर अभी राजा पूजा करके चले गए, अरे वही खड़े हो गए। तब तक तो सुबह के 4 बज गए थे, सॉरी रात हो गई थी, 9-10 बजे बंद करने का समय था। क्योंकि राजा आए, राजा ने पूजन किया, राजा चले गए, पुजारी ने भगवान को शयन किया और ठंड का मौसम था तो पुजारी ने भगवान को शाल उड़ाई, बंद किया मंदिर को, फिर बाहर आए और लॉक किया मंदिर को। तो बाहर ही बुढ़ा आदमी खड़ा है, बोलता मुझे अभी के अभी इनकी सेवा में लगाओ, मैं इनकी सेवा में आया हूँ, थोड़ा कल आ जाओ सुबह मंगला में सेवा दे देंगे आपको। नहीं नहीं मुझे पता नहीं मैं मंगला तक जीऊँगा नहीं जीऊँगा, मैं तो बहुत बुढ़ा हूँ, समय बहुत कम है मेरे पास, मुझे अभी कभी सेवा चाहिए। अरे बाबा हमने सुना है ना आपको, आपको सेवा देंगे आप, अभी सभा समाप्त हो गई है, ठाकुर जी सो गए अभी, कल सवेरे आना आप। तो नहीं नहीं नहीं, तो उनको लगा थोड़ा बाबा बुढ़ा थोड़ा पागल है थोड़ा सा, अभी कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए ना उसको। तो बोलते हैं अभी देखो ये दरवाज़ा बंद किया ना, यहाँ खड़े हो जाओ, ये दरवाजे से कोई अंदर या बाहर जाना नहीं चाहिए। अभी आपको ऐसा बोलेगा आप हंसेंगे, अरे लॉक तो कर दिया आपने, अभी कौन आएगा इसके अंदर से, बाहर बाहर से अंदर कौन जाएगा इधर। लेकिन अभी वो इतनी जिद है उसकी, तो कह रहा है कि आपको यहाँ खड़ा रहना है और ये ताले के साथ दरवाजे की रक्षा करना है, कोई भी अंदर जाना नहीं चाहिए, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। तो एकदम श्रद्धा के साथ खड़े हो गए, पहली सेवा अभी बांके बिहारी की दिल से करूँगा, खड़े हो गए। अरे जैसे ही पुजारी गए 2 मिनट के अंदर बांके बिहारी बाहर आ गए। हाँ 2 मिनट के अंदर श्री बांके बिहारी जी सज धज के पूरे शॉल पहनकर बाहर आ गए। अरे ताला तो वहीं का वहीं रहेगा, ताला तो उधर ही है, ताला वैसे ही है, उसके से बाहर निकला है। तो उसने कहा ए कहाँ जा रहे हो, मैं बांके बिहारी जी की सेवा में हूँ, आप कौन हो? मुझे यहाँ पर रखा गया, किसी को अंदर से बाहर बाहर से अंदर नहीं करना है मुझे, और आप बाहर जा रहे हो, कौन हो आप? तो मैं स्वयं बांके बिहारी हूँ। कभी कभी बोलना पड़ता है, अभी नरेंद्र मोदी आएगा गांव में, इधर किधर खेत में जाएगा, हे कहाँ आ रहे हो, ये पेशाब करने की जगह नहीं है, ये हमारा खेत है। अरे भाई नरेंद्र मोदी हूँ, बोला घर पे आओ ना फिर आप। अभी उसको क्या मालूम, तो गांव का आदमी, उसको सरपंच प्रधान यही मालूम है, उसको कौन मालूम ऊपर कौन बैठा है, क्या गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, अमेरिका में अध्यक्ष कौन है, हाउ विल नो। इतने सीधे साधे व्यक्ति थे। जैसे ही बांके बिहारी मैं हूँ कहा तो चरणों में गिर गए, बोले महाराज ठाकुर जी महाराज मैं आपकी सेवा में हूँ। बोला चलो, तो कहाँ जा रहे हो आप? मैं रास खेलने जा रहा हूँ गोपियों के साथ, रास का समय हो गया है, चलो हमारे साथ। तो चले गए, तो इधर बंसीवट में रास मंडल पे चले गए, बोले बाहर खड़े रहो या रक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। तो उनके साथ चले गए और रास मंडल के बाहर खड़े हो गए, पैरे के रूप में, बड़े इत्मीनान से पैरा दे रहे हैं कि ठाकुर जी अंदर हैं, आदेश दिया है हमको। रात भर रास खेले भगवान, और सुबह सुबह होने के पहले 3-4 बजे के आसपास थक के वो बाहर आए। तो खड़े हैं हमारे बुड्ढे महाराज, तो कहते हैं महाराज हो गया चले? हाँ चलो। तो बांके बिहारी जी और ये बुढ़े भक्त जो हैं वो साथ में चल रहे हैं, और 4 बजे के आसपास ताले के दरवाजे से ठाकुर जी अंदर जाने लगते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं यहीं खड़े रहूँगा, पैरा दूंगा, आप आराम कीजिए जाके। लेकिन बूढ़ा है बेचारा, 4 बजे की ठंड में तो कांप रहा है पूरा, वैसे वो कांप रहा है पूरा। तो ठाकुर जी अंदर जा ही रहे हैं बंद दरवाजे से, देखते हैं कि बेचारा बूढ़ा कांप रहा है, तो अपना शाल निकाला ठाकुर जी ने और उसको उड़ा दिया, बोलो उड़े रहो ठंड लग रही है, मैं जाता हूँ विश्राम करने के लिए। बंद दरवाजे ताले से अंदर चले गए और विश्राम किया उन्होंने। जैसे ही ठाकुर जी अंदर गए 2-3 मिनट के बाद पुजारी आए, उनका मंगला का टाइम हो गया ना, मंगला आरती का, मंदिर खोलना है अभी, भोग लगाना है, फिर मंगला आरती करनी है। तो ये उसको रोकने लगा, ए अभी अभी तो गए वो, तुम कहाँ जगाने जा रहे हो उसको। तो उनको लगा कि भाई कल रात को तो आधे पागल थे, अभी तो सुबह पूरे पागल हो गए, फुल्ली मैड नाउ। तो वो बहुत ज़्यादा बोले, एकदम अड़ गए पूरा, वो पूरा अड़ गए, नहीं जाना है आपको। मैंने कहा ना रात भर वो रास खेल रहे थे, अब भी मैं उनको लेकर आया, अब भी अंदर गए। तो ये सब बातचीत हो रही है तो सब पुजारी देखते, अरे इसके ऊपर इतना चकचकी छाल कहाँ से आया। तो वो कहे कि जब वो अंदर चले गए तो मुझे छाल उड़ा के लेके चले गए वो। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना मैं उनसे मिला वगैरह, ये देखो। तो देख रहे थे भाई फटीचर आदमी का धोती कुर्ता फटा हुआ और उसमें एकदम चकचक चकाचक भरा हुआ छाल जो है वो उसको पहना हुआ है। तो उस देखते हैं कि रात को तो हम इसी को पहना के गए थे ठाकुर जी को, फिर भी उनको लगता था कि कुछ गड़बड़ है। तो वो फिर भी जबरदस्ती दरवाजा खोले, अंदर चले गए, ठाकुर जी का दरवाजा खोला तो वो शाल उनके ऊपर नहीं था, वो इनके ऊपर था। तो भाग के आए, बुड्ढे के चरणों में गिर गए, बोले पागल तुम नहीं हो, पागल हम लोग हैं। भगवान के भक्त जो है ना वो सब दुनिया को पागल दिखते हैं, लेकिन बाद में सारी दुनिया को पागल बनाकर भगवत धाम चले जाते हैं। यही है सब कुछ। जो दुनिया के लिए बुद्धिमान होता है वो बार बार दुनिया में आता है और यही बसता है। जो दुनिया के लिए पागल हो जाता है वो सब दुनिया को पागल बनाकर फिर भगवत धाम चले जाते हैं। तो जो रात भर के लिए पागल था उनके लिए वो एकदम वंदनीय पूजनीय हो गया। तो ऐसे बांके बिहारी जी सबसे बड़ा भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। बस केवल हृदय में सादगी होनी चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए। हाँ पैसा चाहिए, ये चाहिए, उससे अधिक क्यों पैसा, हाँ उसके बाल मुझसे लंबे क्यों ज़्यादा, इसके कपड़े मुझसे ज़्यादा अधिक महंगे क्यों, हाँ उनके पास गाड़ी क्यों मेरे पास क्यों नहीं, उनकी तनख्वाह मुझसे अधिक क्यों, ये सब कपट की बेकार की बातें जो है ना वो जिसके हृदय में रहेगी कभी उसको भगवान प्राप्त नहीं होंगे। जो अपने पास है उसमें आप संतुष्ट रहेंगे और धन्यवाद करेंगे तो भगवान बहुत जल्दी आपके हो जाएंगे। क्योंकि आज की स्थिति को भी थैंक यू कहकर स्वीकार करना ये भी भगवान की कृपा का लक्षण है। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ सरेंडर इज टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज देयर परफेक्ट। रोना नहीं चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, काश मेरी बीवी इतनी सुंदर होती तो कितना जिंदगी बदल चुकी होती। ऐसा बहुत सारा सोचते हैं हम लोग, मैंने क्यों दो लड़कियों के साथ तय किया था, इसको तय किया तो पता नहीं उसको तय करना चाहिए था, ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाती है। हम लोग दो चीज़ के लिए रोते हैं मन में, एक जो हमारे पास नहीं है वो हमको चाहिए इसलिए रोते रहते हैं, जो है वो मालूम नहीं लेकिन जो है नहीं हमारे पास उसलिए रोते हैं। और क्यों रोते हैं? सेकेंड चीज़ जो हमारे पास था वो खो गया, खो दिया हम लोग ने, है ना। अभी आप चल रहे हो तो बंदर में अपना मोबाइल छीन लिया तो रोएंगे आप, है ना। तो भोग और आकांक्षा और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। शोक, शोक किस लिए? जब चीज़ खो बैठी, खो गई हमारी चीज़ तो हम शोक करते हैं, और जब कुछ नहीं है तो उसको प्राप्त करने के लिए आकांक्षा करते हैं। लेकिन भक्त की व्याख्या क्या की गई है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत यानी भगवान में लीन हो गया, वो भगवान के अंदर ही उसका विचार है पूरा। जैसे भगवान का हो गया था तुरंत प्रसन्न आत्मा, मतलब आनंद ही हो गया वो, उसमें कोई दुख नहीं, क्लेश नहीं, पीड़ा नहीं, कुछ नहीं। और उसका लक्षण क्या है? ना शोचती ना कांक्षती, ना किस चीज़ खोने पर वो रोता है, ना कुछ नहीं है इसलिए रोता है कि मुझे चाहिए दे दो। समझ सर्वेशु भूतेशु, सब लोगों को समान देखता है। फिर उसके बाद में वो सोचता नहीं कि यह धनवान है इसके पास ज़्यादा बैठना चाहिए, ये तो फटीचर आदमी है इसको छोड़ दो, ये जानवर है, ये ऐसा नहीं। वो सब जीव को समान रूप में देखता है, समस्त सर्वेशु भूतेशु। और ऐसे व्यक्ति को भगवान बोलते हैं मद भक्ति लभते परम, ऐसे ही व्यक्ति को मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? भगवान को अपने आप को अर्पण करना पड़ेगा, तब क्या होगा? प्रसन्न आत्मा, अनंता आनंद जीवन में आएगा, तब शोक निकल जाएगा, आकांक्षा निकल जाएगी, सब लोगों के साथ गले मिलेंगे, कोई भी गरीब अमीर का भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ प्रेम से रहेंगे, भगवान का पूजन करेंगे। मद भक्ति लभते परम, हरे कृष्णा। तो ये बांके बिहारी की कथा हो गई। तो अभी कथा को यहाँ विश्राम देते हैं, और ये सब कथाओं को याद करते करते राइट साइड में जमुना जी को निहारते निहारते बीच में गाय आई, उसका प्रेम लेते लेते हम राधा वल्लभ जी के मंदिर जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके आगे जाएंगे आप, जहाँ से आप पहुँच गए तो उसके आगे भी जाएंगे तो उधर केशी घाट है, बहुत प्रसिद्ध घाट है वो केशी घाट। तो केशी घाट के किनारे भगवान ने केशी राक्षस का वध किया था। केशी राक्षस घोड़े के रूप में आया था, कंस का दूध था वो। तो भगवान ने उसके मुंह में अपना मूठ जो है ना, मूठ उसको डालकर उसको बड़ा कर दिया और उसको चोकअप करके ख़त्म कर दिया। बोलो केशी निसूदन भगवान की। केशी घाट का ऐसा वरदान है कि वहाँ पर आप पहुँचोगे कभी तो सारी आपकी इच्छाएं भगवान छीन लेंगे। इसलिए कहा गया है अगर आपको कुछ इच्छा है और बना के रखना है उसकी अपनी इच्छा को तो केशी घाट मत जाना। केशी घाट जाएंगे तो सारी इच्छाएं भगवान छीन लेंगे चश्मे के साथ। श्याम सुंदर जी वहां पर खड़े हैं मुरली बजाते हुए, सबका दिल चुरा लेते वो, तो वो केशी घाट पे खड़े हैं। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा, श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा, हरे कृष्णा।